अमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी तीरा बन चारी राधा माधव कुंज बिहारी
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य स्तोत्र तस्वी श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरण रिविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला स्पॉन फाउंडर आचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौणताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड गुराम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 17 पृष्ठ संख्या 528 निकाल लिया सबने अरे पीछे बोलिए यस्यताहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुन्धिर्यस्य न लेप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति नानि बध्यते। शब्दार्थ बोलिए। यस्य जिसके न नहीं अहंकृतः मिथ्या अहंकार का भावः स्वभाव बुद्धि बुद्धि यस्य जिसकी न कभी नहीं लिप्यते आसक्त होता है हत्वा मारकर अपि भी सह वह इमान इस लोकान संसार को न कभी नहीं हन्ति मारता है न कभी नहीं निबध्यते बद्ध होता है। अनुवाद मेरे पीछे बोली जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश है तारिने। ये श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यश ना हम कृतो भावो बुद्धिर यश न लिपिते। तो जिसके अंदर भाव नहीं है, किस प्रकार का अहंकृत कि मैंने किया, इस प्रकार का भाव नहीं है। कोई भी कार्य में सफलता मिली है तो उसके अंदर ये भाव नहीं है कि ये मैंने किया है। और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है कि मैंने किया है, इस अहंकार में जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, तो हत्वा विषय ईमान लोगा, तो इन सब लोगों को मार करके भी वो नहीं मारता है और ना वो कर्म से बंधता है, है ना। तो भगवान का सीधा इशारा अर्जुन के ऊपर है, क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि हमें हत्या लगेगी अर्जुन, इसलिए हम यहाँ पर भगवान सीधे इशारा कर रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन से कि तुम अगर इस भावना से युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और ये 18वां अध्याय जो शुरू हुआ है अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ है। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया है, संन्यास का और त्याग का अलग अलग तत्व मैं जानना चाहता हूँ। पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा है संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केश निशोधन, कि संन्यास का तत्व मैं जानना चाहता हूँ और त्याग का तत्व पृथक जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन की भावना यही है कि संन्यास के नाम पर या त्याग के नाम पर किसी प्रकार से भगवान के मुंह से मैं सुन लूं कि भाई युद्ध नहीं करना है, युद्ध छोड़ दिया जाए। तो इसलिए अर्जुन ने दो शब्दों का प्रयोग किया है कि दोनों शब्दों को अलग अलग समझा दीजिए, है ना। तो संन्यास की जो विधि है वो भगवान ने बाद में समझाई है और संक्षेप में समझाई है, कि संन्यास की विधि बहुत मुश्किल है और किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और त्याग की जो विधि है ये भगवान ने शुरू की है श्लोक संख्या 4 से। श्लोक संख्या 4 में भगवान कहते हैं निश्चयम श्रुण में तत्र त्यागे भरत सप्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संपकीर्तिता, कि तीन प्रकार का त्याग बताया गया है। तो भगवान ने जो है पहले तो तामसी त्याग बतलाया है श्लोक संख्या 7 में कि कोई व्यक्ति अगर नियत कर्म का त्याग करता है मोह से तो तमोगुणी त्याग कहा जाता है। तो इससे भी भगवान ने अर्जुन को जो है इशारा कर दिया कि अगर तुम इस प्रकार से युद्ध छोड़ते हो मोह के कारण कि तुम्हारा परिवार है, ये सब तुम्हारे जो ना कुल के लोग हैं, तो ये तुम्हारा तामसी त्याग है। और फिर भगवान अर्जुन को इशारा करते हैं रजोगुणी त्याग में, कोई व्यक्ति अगर दुख मान करके कि शरीर को जो ना कष्ट, मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है और वो अगर इस युद्ध को छोड़ता है तो ये रजोगुणी त्याग है, तो ये भी ठीक नहीं है, है ना। तो अपने को कष्ट हो रहा है इसलिए युद्ध नहीं करना है, रजोगुणी त्याग है। और इनको कष्ट हो रहा है इनको कष्ट नहीं देना है और युद्ध इसलिए छोड़ दिया, तो तमोगुणी त्याग है, है ना। और सतोगुणी त्याग में भगवान ने क्या बताया कि वो फल का त्याग करता है, कर्म की आसक्ति और कर्म का फल त्याग करता है लेकिन कर्म त्याग नहीं करता है, कर्म करता है, नियत कर्म करता है, है ना। तो ये जो है ना सात्विक त्याग है। तो अब फिर भगवान ने जो है ना 5 कारण बताए 13वें श्लोक में। भगवान ने कहा कि मैं 5 कारण बताऊंगा कोई भी कर्म होता है। तो अब ये जो 5 कारण भगवान बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने को जिम्मेदार ना समझे कि हाँ मैं ही कर्म कर रहा हूं। कोई भी कर्म अगर होता है तो इसमें केवल अपने द्वारा कर्म नहीं हो रहा है, इसमें क्या है, एक तो शरीर है, तुझे भगवान की कृपा से आपको अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो इसके द्वारा ही आप कुछ कर्म कर सकते हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, शास्त्र के अनुसार हो शास्त्र के विपरीत हो, या मन से कर्म किए जाते हो या शरीर से किए जाते हो या वाणी से किए जाते हो, है ना। तो जितने भी कर्म है ये आपको मनुष्य का शरीर अगर मिला है तो ही आप कर पाते हो, है ना। तो पहली बात तो है कि ये शरीर ये आपकी इच्छा से नहीं मिला है, वो आपकी इच्छा से जो है ना ये रहेगा भी नहीं। तो एक तो ये है कि शरीर कारण है, तो आप अकेले नहीं हो कि भाई मैं कर रहा हूँ, आप सोचते हो मैं कर रहा हूँ, है ना। अधिष्ठानम, ये 14वां श्लोक है, 5 कारण भगवान बता रहे हैं। फिर कर्ता, कर्ता का मतलब आप जीवात्मा, आप हैं, इसमें एक कारण आप भी हैं, लेकिन मतलब एकमात्र कारण आप नहीं है, है ना, एक तो शरीर है और दूसरा आप हैं। और फिर करणम चाहे पृथक विधम, करण का मतलब इंद्रियां, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। तो आप जब कुछ कर्म करते हो तो हाथ है, पैर है, वाणी है, इन सब का उपयोग करते हो कर्म करने के लिए। अगर ये काम ना करें, कभी खराब हो जाए, गला खराब हो गया तो फिर मैं प्रवचन नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो और ये हाथ है, पैर है, अगर ये काम ना करें तो फिर बहुत से काम बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से आंखें हैं, नाक है, कान है, है ना, तो कानों से सुनते हैं, ये कान काम नहीं करेंगे, नहीं सुनाई देगा, आप क्या काम करवाएंगे, है कि नहीं। आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, आप क्या काम करवाएंगे, है ना, तो काम बंद हो जाएंगे। तो ये भी जो ना आपके हाथ में नहीं है कि आपको हाथ ये और ये पैर और ये आंखें और कान जो मिले हैं ये काम कर रहे हैं आपकी इच्छा से। कभी भी ये जो है खराब हो सकते हैं और बंद हो सकते हैं। तो जो ना ये जो आपने कर्म किया है तो ये नहीं है कि भाई आप अकेले ही इसके जो ना कारण है, है ना, आपका अकेला पुरुषार्थ नहीं है इसमें। विविधाचार पृथक चेष्टा, फिर विविध प्रकार की चेष्टाएं भी होती हैं कर्म में, है? जो कि करनी पड़ती है। इसमें कई लोगों का सहयोग भी लेना पड़ता है, कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है और पहले से दिमाग भी लगाना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती हैं, तब कोई काम होता है। अगर समय से पहले आपने सब योजनाएं नहीं बनाई तो वो समय निकल गया और कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो कर्म की सफलता के लिए पहले से आपको कई प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती हैं और कई लोगों से सहयोग मांगना पड़ता है और सहायता मांगनी पड़ती है और अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है पांच प्रकार के कर्म के कारण है जिनमें कि आपका अकेला पुरुषार्थ नहीं है। तो 16वें श्लोक में भगवान ने कहा था तत्रैवम सति कर्तारम आत्मानम केवलम तिया। जो व्यक्ति अपने को ही अकेला कर्ता मान रहा है तो वो दुर्मति है, वो दुर्बुद्धि है। तो ये तो भगवान ने बताया। अब भगवान ये कहते हैं यस्य न अहम कृतो भाव, जिसके अंदर अहंकृत भाव नहीं है। अहंकृत का मतलब है कि मैंने किया ये काम, मैंने किया, इसका भाव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भक्त होता है तो वो कृष्ण को श्रेय देता है कि कृष्ण की कृपा से हुआ, है कि नहीं। अहंकृत, तो जब कार्य हो चुका तो फिर जो है ना वो जो है यही मानता है। अगर कोई लोग प्रशंसा करते हैं भी उसकी तो वो जो है ना अपनी प्रशंसा मानता नहीं है, हालांकि कभी सुन भी लेता है अपनी प्रशंसा, लेकिन वो मानता नहीं है कि ये मेरी प्रशंसा है, वो भगवान की ही प्रशंसा मानता है। और वो पारदर्शी माध्यम बन जाता है कि ये प्रशंसा भगवान को मिल रही है। इस प्रकार से वो जो ना कि हर्ष से जो ना फूल नहीं जाता है, है ना। तो इससे ना हम कृत भावो और बुद्धि न लिप्त, बुद्धि उसकी लिप्त नहीं होती है इस चीज में, है ना। तो ये चीज है। तो फिर जो है ना हत्वा पिता ईमान लोग न हंती ना निबद्ध थे, वो इन लोगों का की हत्या करके भी वो ना तो हत्या कर रहा है और ना बनता है। तो ये उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, एक सैनिक अगर मारता है शत्रुओं को अगर मारता है तो सेना नायक के आदेश से मारता है। अब अगर वो कहता है कि मैंने मारा तो वो गलत है कि मैंने मारा, जब उसको आदेश दिया गया तो उसने मारा, और फिर उसको ये शरीर मिला है तो फिर कैसे कहता है कि मैंने मारा। क्योंकि अगर शरीर ना होता ऐसा, है ना, सेना में जो ना शरीर को बनाने के लिए भी कई तरह की उसको अभ्यास कराए जाते हैं, ट्रेनिंग कराई जाती है, है ना, खिलाया पिलाया जाता है, तो फिर वो कैसे कहता है कि मैंने मारा, है? उसको कितना दौड़ाया जाता है और फिर अभ्यास कराया जाता है कि नहीं, शूटिंग करने का अभ्यास कराया जाता है, तो फिर वो क्यों सोचता है कि भाई मैंने मारा। तो उसको शरीर मिला, अधिष्ठान है, फिर इंद्रियां, हाथ पैर हैं, आंखें हैं और कान है, इनकी सहायता भी है ना। और ये कभी भी अगर काम ना करें, आंखें हैं, कान है, काम ना करें, नहीं सुनाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो कैसे मारेगा, है कि नहीं। फिर चेष्टाएं भी हैं जिसमें कई लोगों की सहायता भी उसको मिली, ऐसा थोड़ी है कि उसने अकेले मारा, उसको कितनी सहायता मिली, कितनी तरह की सुरक्षाएं मिली हैं जिसमें कि उसने शत्रुओं को मारा, फिर वो कैसे सोचता है कि मैंने मारा, है कि नहीं। तो इस प्रकार कई हेतु हैं जिनकी सहायता से उसने शत्रुओं को मारा है, इसलिए अच्छा है कि वो अपने को ना समझे कि उसका पुरुषार्थ है, वही ज्यादा अच्छा है, अपना पुरुषार्थ ना समझे। जब वह कार्य करता है तो उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती इस अहंकार से, बुद्धि व्यसन लिप्त है भगवान कहते हैं, है ना। तो इस तरह की जो जो है ना बातें हैं, तो ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में जो तीसरा स्कंध है उसमें ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि अब मैं आपके आदेश से सृष्टि की रचना करूंगा तो मुझ में अहंकार आ जाएगा कि मैं ईश्वर हूं। रजोगुण के कारण ये अहंकार जो है ना आता है कि भाई मैंने किया है कि नहीं, रजोगुण का जो भाव होता है, और ब्रह्मा जी रजोगुण में सृष्टि करेंगे तो उनको चिंता है। तो ब्रह्मा जी की बड़ी लंबी प्रार्थना है, उसमें से कुछ इस श्लोक में पढ़ रहा हूं जिसमें ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं, उनके सारे कार्य आपकी अंतरंग शक्ति के माध्यम से संपन्न होते हैं, तो मेरी आपसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में आप मुझे अपनी सेवा में लगा लें। और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा कि मैं सृष्टा हूं, कि मैं कर रहा हूं, है ना। ऐशय प्रपन्न वरदो रम्यात्म शक्त्यं यन्यन् करिष्यति गृहीत गुणावतारं तस्मिन् स्वविक्रममिदं तर्जितोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजयाम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, भौतिक सृजन पालन और संहार के हेतु प्रकृति के तीन गुण अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंग शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र है, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की कि मैं भगवान का उपकरण हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान का, अपने को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित ना होने की उन्होंने प्रार्थना की कि झूठी प्रतिष्ठा आएगी, क्योंकि जितने भी जो प्रजापति लोग होंगे और प्रजा होगी वो मुझको ही मानेगी, मैं ही ईश्वर हूं, तो फिर मैं भी मानने लगूंगा कि मैं ईश्वर हूं। भगवान का प्रिय बनने और उनका वरदान पाने की यही विधि है कि भगवान की महिमा समझो, अपनी महिमा मत समझो। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजन का श्रेय लेना चाहते हैं कि मैंने किया मैंने किया, तो अपना नाम भी जो ना लिखवाते हैं, खुदवाते हैं, है ना। किंतु बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजन का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए, एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कलमश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपकी शक्तियां असंख्य हैं, जब आप प्रलय के जल में लेटे रहते हैं तो आपकी नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में आपकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। नाभि हृदय दिह सतोम भसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा मनंत शक्ते रूपम विचित्र मृदिमस्य विवृण्वतो मे मारी रिशिष्ट निगमस्य गिरम विसर्गम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनका संपर्क अनेक दूषित जीवों से होना है। एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतितों की संगति के कारण अपने ब्रह्म तेज से नीचे गिर सकता है, तो सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी है, जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो वो अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद के लिए मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था कि तुम्हारे ऊपर भौतिक संसर्ग का प्रहार नहीं होगा। वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज धार के समान बताया गया है, तेज चाकू की धार के समान है। थोड़ी सी असावधानी से तुरंत ही अशांति और रक्तपात हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता रहता है, उसे भौतिक कलमश में गिरने का कोई भय नहीं रहता है, है ना। तो ये चीज जो है भगवान यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से होता है। तो भगवान ने बाद में आशीर्वाद दिया ब्रह्म जी को, तो भगवान क्या कहते हैं, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जैसे काठ में अग्नि स्थित होती है ना। तो भगवान है कारण, पांच कारणों में देवम से मात्र पंचमम, देवम देवम का मतलब परमात्मा, और परमात्मा प्रत्येक प्राण परमाणु के अंदर विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है ना। तो वे जो ना सबसे बड़े कारण है कर्म के। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी से, केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। यदा तो सर्वभूतेषु दारुस्वग्निम विस्थितम प्रतिचक्षित माम लोको जय्या तर्येव कस्मलम। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए। वही मतलब, अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने कार्य किया, इसका मतलब कि मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान को भूल गया मैं। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें ये विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है, काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकार रोका हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अग्नि की गर्मी का गुण सर्वत्र वही रहता है, और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का भिन्न अंश हर जीव में एक सा रहता है। इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र ये दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है, अतः उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वो शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चेष्ट बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता है। तो ये चीज है, भगवान ने हमेशा प्रार्थना की है कि आपके चरण कमलों को मैं ना भूलूं। इसका ये मतलब है कि कोई भी कार्य करूं, चाहे छोटा करूं या बड़ा करूं, मैं आपके चरणों का हमेशा स्मरण करूं। इसका मतलब क्या है कि भगवान की महिमा ही जितने भी कार्य हो रहे हैं, कोई भी योग्यता अगर मेरे अंदर है तो भगवान से आ रही है, तो भगवान के चरणों को ना भूलूं। ये भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। अब श्लोक संख्या 26 निकालिए इस अध्याय में, 18वां अध्याय का। इसमें भगवान जो है अनहमवादी ये शब्द बताते हैं सात्विक कर्ता के बारे में, है ना। इसमें अहंकृतो भावो लिखा ना, अहंकृतो है ना, और अहमवादी अनहमवादी इसमें शब्द है। 26वां श्लोक है, मुक्त संगो न अहमवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उचित। सात्विक कर्ता कैसा होता है भगवान कहते हैं मुक्त संगो, एक तो आसक्ति से मुक्त है, और अनहमवादी आसक्ति कर्म की आसक्ति से मुक्त है। अनहमवादी का मतलब क्या है, अहमवादी वादी का मतलब बोलने वाला, और अहम का मतलब मैं, है ना, हमेशा मैंने किया इसको कहते हैं वादी अहमवादी, है ना। तो अनअहमवादी, अनअहमवादी का मतलब वो नहीं इस प्रकार से ढिंढोरा पीटता है कि मैंने किया, है कि नहीं, सात्विक करता ही है, तो वो बनता नहीं कर्म से, अनहमवादी धृति उत्साह समन्वित। अब अनहमवादी भाई मुझे शरीर नहीं लेना कि मैंने किया है, तो फिर मैं क्यों उत्साह पूर्वक कार्य करूं, नहीं उत्साह पूर्वक कार्य करता है, धृति उत्साह है, धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करता है, धैर्य भी होना चाहिए साथ साथ। खाली उत्साह है तो वो रजोगुण में हो सकता है, लेकिन धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि अगर असफलताएं मिल रही हैं कई प्रकार की कार्य में, लेकिन तो भी वो धैर्य से उसको करता रहता है। तो धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धियों निर्विकार करता सात्विक उचित। सिद्ध सिद्धियों का मतलब है कि जैसे अर्जुन अगर युद्ध करेंगे तो अगर उनकी मृत्यु हो जाए, वो मारे जाए तो भी ठीक है, और अगर उनको राज्य मिले, उनकी विजय हो तो भी ठीक है। दोनों हालत में वो जो है अपना लाभ समझता है, मरने में भी लाभ है। और अगर जैसे भगवान ने कहा हतो वा प्राप्ति स्वर्गम, अगर मरोगे तो स्वर्ग तो कम से कम प्राप्त होगा ही, अगर भौतिक कामना है तो स्वर्ग प्राप्त होगा ही, अगर भौतिक कामनाएं नहीं है तो फिर वैकुंठ भी प्राप्त हो जाए। तो स्वर्ग तो हर हालत में प्राप्त होना ही है कम से कम, और जीतवा वा भोग से, अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तो दोनों प्रकार से इस निर्विकार का मतलब है कि वो सफलता सफलता में कोई विकार नहीं होता उसको, क्योंकि वो जानता है कि मैं आदेश का अगर पालन कर रहा हूं भगवान के, तो जो है ना मेरा यही सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूं, भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। बाकी और लाभ हो या ना हो वो दूसरी बात है, ये सबसे बड़ा लाभ यही है कि मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूं। तो ये जो है ना सात्विक करता है। अब श्लोक संख्या निकालिए 45वां है या 46वां, जिसमें भगवान के यतः प्रवृत्ति भूतानां, हाँ 46वां है, बल्कि इसके पहले 45वां है, इसको पहले पढ़ेंगे फिर 46वां। 45वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं स्वेस्वे कर्मन ने भी रहा संसिद्धि में लभते रहा स्वकर्म निर्दाह सिद्धि यथा वेन्दरी दक्षिणु।